भजन संहिता 107। आइए हम बाइबल में से भजन 107 निकालें। भजन 107 की शुरुआत में ही भजनकार हमें उपदेश देता है। भजन 107 पद 1, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। धन्यवाद करने का मुख्य कारण उसकी भलाई और करुणा है। दो बातें जिसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए वे हैं उसकी भलाई और उसकी करुणा। मैं परमेश्वर की दया के लिए कितना आभारी हूं। यदि परमेश्वर की दया न होती तो मैं कहाँ होता, निश्चय ही यहां न होता। परंतु भजन 107 पद 1 में आगे लिखा है, और उसकी करुणा सदा की है। इस भजन का पहला ही पद हमें प्रेरित करता है कि हम यहोवा का धन्यवाद करें। उसके बाद वो कुछ लोगों के बारे में और परिस्थिति के बारे में वर्णन करता है। हम देखते हैं कि यहां एक पद ऐसा है जिसे 3 वरन 4 बार दोहराया गया है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। अपनी संतान के लिए उसके अद्भुत कामों का धन्यवाद करें। मेरे विचार में हम परमेश्वर की भलाई और उसके कामों के बारे में बहुत कम चिंतन करते हैं, क्योंकि बिना बड़ाई और धन्यवाद के हम ढंग से चिंतन नहीं कर सकते हैं। जब हम उसकी भलाई और आशीष पर और उसके कामों पर चिंतन करने लगते हैं तब बड़ाई अपने आप होती है। दूसरे पद में वो कहता है, भजन 107 पद 2, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। हम छुड़ाए गए हैं, पत्रस कहता है, पहला पत्रस 1 अध्याय 18 और 19 पद, तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हमारा छुटकारा हो चुका है, हमें ऐसा ही कहना चाहिए। प्रभु के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे। हम सब पाप के बंधन में थे, हम शैतान की बंधुआई में थे। पौलुस कहता है, इफिसियों 2 अध्याय 2 और 3 पद, तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु उस भयानक स्थिति से परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। भजन 107 पद 3 से लेकर 6 तक, और उन्हें देश देश से पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर ना पाया। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको साकेती से छुड़ाया। भजनकार इसराइली लोगों की परिस्थिति का वर्णन कर रहा है। उन्हें परमेश्वर ने समस्त देशों से निकालकर एकत्र किया है, जो जंगल के मार्ग में भूखे और प्यासे भटकते फिरे और विकल हो गए। तब उन्होंने संकट के दिन यहोवा को पुकारा और उसने उनको छुड़ाया। भजन 107 पद 7 से लेकर 9 तक, और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। भजन 107 पद 5 में वो उनकी हालात को बताता है, भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। भजन 107 पद 9 में वो अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। ये एक अभिलाषी जीव है जिसे हम मनुष्य की चेतना कहते हैं। मनुष्य के विवेक में कहीं ना कहीं एक ऐसा स्थान होता है जो हरेक अनुभव से अधिक कुछ खोजता है। इस अभिलाषा को परमेश्वर तृप्त करता है। भजन के द्वितीय भाग में वो एक अलग प्रकार के मानव समूह का वर्णन करता है। भजन 107 पद 10 और 11, जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। इसलिए वो द्वितीय समूह के बारे में कहता है जो विपत्ति में जकड़ा हुआ है। इस समूह के मनुष्य दुख में पड़े हैं। इसका एकमात्र कारण है कि उन्होंने परमेश्वर के वचन से विद्रोह किया है और उसके परामर्श को ना माना है। कितनी बार हम भी विपत्ति में पड़े जब हमने परमेश्वर के परामर्श को नहीं माना। मैं स्वयं कर लूंगा, मुझे अकेला छोड़ दे प्रभु, मैं अपने तरीके से करूंगा, मैं अपनी इच्छा से करना चाहता हूं। इस प्रकार की बातें मनुष्य को बंधुआई में ले जाती है। कई बार हम आश्चर्य करते हैं, मैं ऐसी मुसीबत में कैसे पड़ गया, क्योंकि हम ईश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और उसकी सम्मति को तुच्छ जाना। भजन 107 पद 12 और 13, तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया, वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक ना मिला। तब भजन संहिता 107 12 और 13 पद, विपत्ति की परिस्थिति में, पद 13, उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी। एक बार पद 6 को फिर से देखिए, पहला समूह जिसने विपत्ति के समय परमेश्वर को पुकारा। भजन 107 पद 13 और 14, और उसने साकेती में उनका उद्धार किया, उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। भजनकार मनुष्यों को दो भागों में विभाजित करता है। पद 10 देखें, जो दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, परमेश्वर ने उनके बंधनों को तोड़ डाला। भजन 107 पद 15, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। भजनकार फिर से दोहराता है, भजन 107 पद 16, क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे के बेंडों को, छड़ों को टुकड़े टुकड़े किया। अब वो तीसरे समूह के बारे में कह रहा है, भजन 107 पद 17, मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। हम स्वयं ही अपने ऊपर दुख लाते हैं। भजन 107 पद 18, उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है। पद 18 में आगे लिखा है, और वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। और वो फिर से कहता है, भजन 107 पद 19 और 20, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वो साकेती से उनका उद्धार करता है। वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। बहुत बार परमेश्वर अपने वचन को चंगाई के लिए प्रयोग करता है, छुटकारे के लिए प्रयोग करता है, हमें मुक्त कराने के लिए प्रयोग करता है। बहुत बार जब मुझे व्यक्तिगत समस्या होती है और मैं बहुत विचलित होता हूं और प्रार्थना करता हूं, तब प्रभु अपना वचन भेजता है। वो अपना वचन मेरे हृदय में दिखाता है। एक वचन मेरे मन में आता है, इसी वचन की मुझे जरूरत थी। बहुत बार परमेश्वर का वचन विशेष परिस्थितियों में मेरे मन में प्रकट हुआ। मैंने कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मुझे यही चाहिए था, क्योंकि जिसकी मुझे उस समय आवश्यकता थी वही वो वचन था जिसने मेरी अगुवाई की, मुझे सामर्थ और सफलता दी। भजन 107 पद 21 और 22। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, और वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए उनके कामों का वर्णन करें। पुराने नियम में परमेश्वर के पास आने के लिए उन्हें बलि लेकर याजक के पास आना होता था। वहां विभिन्न प्रकार की बलियां चढ़ाई जाती थी, पाप बलि जो पाप के लिए चढ़ाई जाती थी हम जानते हैं, परंतु वहां मेल बलि भी होती थी, जिसके पीछे विचार ये होता था कि परमेश्वर से संगति की जाए। वे बलि लाते थे और उसे वहां आग में भूनते और वहीं परमेश्वर के सम्मुख बैठकर खाते थे। बलि का एक भाग परमेश्वर के लिए जलाया जाता था और वे अपना भाग खाते थे। ये प्रीति बोझ होता था। मैं भी परमेश्वर के समीप जाना चाहता हूं, उसके साथ भोजन करना चाहता हूं, और इस प्रकार से वे मेल बलि चढ़ाते थे। वहां होम बलि भी होती थी और होम बलि पवित्रकरण की बलि होती थी। परमेश्वर, मैं तेरे लिए स्वयं को पवित्र करता हूं, इसलिए मैं परमेश्वर तेरे लिए होम बलि चढ़ाता हूं, जो परमेश्वर के प्रति स्वयं का समर्पण करना होता है। इसलिए विभिन्न बलिदान चढ़ाए जाते थे। आजकल हम कहते हैं हम अनुग्रह के समय में रह रहे हैं और यीशु ने स्वयं को एक बार सदा के लिए बलि कर दिया है। वो हमारी पाप बलि को सदा के लिए पूरा करता है, परंतु नए नियम में भी बलि है जिसके चढ़ाने का आदेश हमें दिया गया है। ये पशुओं का बलि नहीं परंतु फलों की बलि है। इब्रानियों 13:15। हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होंठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। स्तुति रूपी बलिदान मेल बलि बन जाता है, क्योंकि स्तुति रूपी बलिदान के द्वारा मैं उसकी संगति में आता हूं। भजन संहिता 22:3। परंतु हे तू जो इसराइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, स्तुति रूपी बलिदान अपने आप को समर्पित करना होता है, जिससे हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और कहते हैं कि मैं स्वयं अपने जीवन को तुझे सौंपता हूं। इसलिए यहां स्तुति रूपी बलिदान है। भजनकार कहता है वे धन्यवाद की बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। हम लोगों की एक टोली से बात कर रहे थे और हम कह रहे थे हमें किसी रात्रि इकट्ठे होकर प्रभु की बातों पर मनन करना चाहिए और उसके आश्चर्य कर्मों पर भी जो वो कर रहा है। हम एक शाम को एक साथ मिलकर उसकी भलाई, उसके कार्यों की और उसकी आशीषों की बातें करें। कितनी लाभकारी होगी वे शाम जब हम बैठकर बस उसी की बातें करें। ओह, आपको याद है परमेश्वर ने क्या किया था, वो कैसे महिमामय कार्य था। बस याद करें प्रभु ने क्या क्या किया है, कैसा महान है, और आनंद करें। ये लुभावनी बात है जब लोग मिलकर प्रभु की बातें करते हैं। प्रभु इससे सदा खुश रहता है, वो रुचि लेता है कि आप क्या कहते हो। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार आपको अच्छा लगता है जब लोग आपके बारे में बातें करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। आपको मौका मिलता है कि आप अपना नाम सुने और आप अपने नाम को बड़ी खामोशी से सुनते हैं और ये जान पाए कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर भी ऐसा ही करता है। मलाकी की पुस्तक में लिखा है, मलाकी 3:16, यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। परमेश्वर लेखा रखता है और उस दिन वे बातें मोतियों की नाई गिनी जाएंगी। कोई परमेश्वर के बारे में बातें करे या परमेश्वर को भाता है, इसलिए जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। अब हम चौथे प्रकार के लोगों के बारे में देखते हैं। इस भजन का चौथा भाग समुद्री यात्रियों के लिए है। भजन 107 पद 23-24, जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वो गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। समुद्र सदैव ही आश्चर्य का विषय है। मुझे समुद्र पसंद है, मुझे पानी से सदा लगाव रहा है। मुझे पानी में कूदना, समुद्री जीवों और मछलियों को जो परमेश्वर का कार्य है देखना भाता है, उन आश्चर्य कर्मों को जो वो गहरे समुद्र में करता है हम देखते हैं। भजन 107 पद 25-26 तक, क्योंकि वो आज्ञा देता है तब प्रचंड ब्यार उठकर तरंगों को उठाती है, वे आकाश तक चढ़ जाते फिर गहराई में उतर आते हैं, और क्लेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। वे चक्कर खाते और मतवाले की नाई लड़खड़ाते हैं और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। क्या आप कभी समुद्री तूफान की प्रचंड लहरों में फंसे हो? भजन 107 पद 28-30 तक, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वो उनको साकेती से निकालता है। वो आंधी को थाम देता है और तरंगे बैठ जाती है, तब वे उनके बैठाने से आनंदित होते हैं और वो उनको मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। परमेश्वर के कार्य हमें स्वर्ग में ले जाते हैं, सुंदर स्थान। भजन इस संबोधन के साथ समाप्त होता है कि परमेश्वर के कार्यों के लिए उसकी प्रशंसा करें और भजनकार परमेश्वर के कार्यों को सूचीबद्ध करता है। भजन 107 पद 32-43 तक, और सभा में उसको सराहो और पुरनियों की बैठक में उसकी स्तुति करें। वो नदियों को जंगल बना डालता है और जल के सोतों को सूखी भूमि कर देता है। वो फलवंत भूमि को नोनी भंजर करता है, ये वहां के रहने वालों के दुष्टता के कारण होता है। वो जंगल को जल का ताल और निर्जल देश को जल के सोते कर देता है, और वहां वो भूखों को बसाता है कि वे बसने के लिए नगर तैयार करें और खेती करें और दाख की बारियां लगाएं और भांति भांति के फल उपजा ले, और वो उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं और उनके पशुओं को भी वो घटने नहीं देता। फिर अंधेर, विपत्ति और शोक के कारण वे घटते और दब जाते हैं, और वो हाकिमों को अपमान से लादकर मार्ग रहित जंगल में भटकाता है। वो दरिद्रों को दुख से छुड़ाकर ऊंचे पर रखता है और उनको भेड़ों के झुंड सा परिवार देता है। सीधे लोग देखकर आनंदित होते हैं और सब कुटिल लोग अपने मुंह बंद करते हैं। जो कोई बुद्धिमान हो वो इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। अतः भजन के अंतिम पद का निष्कर्ष है, जो कोई बुद्धिमान हो वो इन बातों पर ध्यान करेगा। किन बातों पर? बढ़ाई और धन्यवाद पर। वो यहोवा के करुणा के कामों पर ध्यान करेगा।